कहने लगे महाराज कितना सुंदर आपने आख्यान सुनाया, संसार के प्रत्येक मनुष्य को इन आख्यान के आधार पर चलना चाहिए। आपके मुंह से तो धर्म की बातें सुनते सुनते तृप्ति नहीं होती है। ये जो कार्तिकेय जी थे इनका जन्म कैसे हुआ और ये शिवजी के पुत्र कहलाते हुए अग्नि के पुत्र कैसे हो गए, ये सब हमको यथावत सुनाओ। हे गुरुनंदन, मैं आपको कार्तिकेय का जन्म सुनाता हूं। पूर्व काल में देवता और असुर आपस में संग्राम ठानते रहते थे। उनमें सदाई घोर रूप वाले असुरों को देवताओं पर विजय होती थी। जब इंद्र ने बार बार सेना को नष्ट होते देखा तो वे मानस पर्वत पर जाकर एक श्रेष्ठ सेनापति की प्राप्ति के लिए विचार करने लगे। इतने में ही उनके कानों में एक स्त्री का आर्तनाद हुआ, बार बार चिल्ला रही थी, अरे कोई पुरुष हो तो दौड़ो, मेरी रक्षा करो, मैं संकट में पड़ी हुई हूं। इंद्र उसी समय विलाप करके, डरो मत, मैं देवराज इंद्र तुम्हारी सहायता के लिए आ रहा हूं, तेरे लिए भय की कोई बात नहीं है। फिर जिधर से आवाज आई उधर से उसी रास्ते से इंद्र चले और देखा कि एक सामने दैत्य खड़ा है, उसकी जटा पकड़े हुए है और अपने हाथ में तलवार लिए हुए है। तब उस कन्या का हाथ पकड़कर इंद्र ने कहा, अरे नीच कर्म करने वाले दैत्य, तू इस कन्या का हरण करना चाहता है? याद रख मैं वज्रधर इंद्र हूं, अब तू इसका पिंड छोड़ दे, नहीं तो अब मैं किसी प्रकार तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूं। वो केशी नाम का दैत्य था, उसने, अरे इंद्र तूने इसका हाथ पकड़ा, इसे तू ही छोड़ दे, मैंने इसका वरण कर लिया है, ऐसा करने पर तू जीता जागता अपनी पुरी में लौट जाएगा, नहीं तो मेरे हाथ से मारा जाएगा। इंद्र ये कहां तक सहन करता। इंद्र ने अपनी गदा छोड़ी, केशी ने अपनी गदा छोड़ी, किंतु इंद्र ने अपने वज्र के द्वारा उसे बीच में ही काट डाला। फिर केशी ने क्रुद्ध होकर इंद्र पर एक पहाड़ की चट्टान फेंकी, इंद्र ने टुकड़े टुकड़े कर दिए। गिरते समय केशी के ही चोट लगी, उस चोट से घबराकर उस कन्या को छोड़कर वो भागने लगा और इतना जल्दी भागा कि इंद्र को देखते देखते ओझल हो गया। उस चोट से घबराकर वो कन्या को छोड़कर भागकर अदृश्य हो गया। केशी के भाग जाने पर इंद्र ने उस कन्या से पूछा, हे सुमुखी तुम कौन हो, किसकी पुत्री हो, तुम्हारा इस घोर जंगल में क्या काम है? कन्या ने कहा, हे इंद्र मैं प्रजापति की पुत्री हूं, मेरा नाम देवसेना है, दैत्य सेना मेरी बहन है, उसे ये कैसी पहले ले जा चुका था, हम दोनों बहनें हैं, प्रजापति की आज्ञा लेकर साथ साथ ऐसी खेलने के लिए मानस पर्वत पर आया करती थी, और ये केशी दैत्य नित्य प्रति हमको अपने साथ चलने के लिए कहता रहता था, किंतु दैत्य सेना का तो इस पर प्रेम हो गया, मैं इसे नहीं चाहती थी इसलिए उसे तो वह ले गया, मैं अपने बल पराक्रम से बचती रही। अब तुम जिस दुर्जय वीर को निश्चित करोगे उसी को मैं अपना पति बनाना चाहूंगी। इंद्र ने कहा, मेरी माता दक्ष पुत्री अदिति है, इसलिए तू मेरी मौसेरी बहन है। अच्छा बता तेरे पति का कैसा बल होना चाहिए? कन्या बोली, जो देवता दानव यक्ष किन्नर नाग राक्षस दुष्ट दैत्य को जीतने वाला हो महान पराक्रमी हो, अत्यंत बलवान हो तथा जो तुम्हारे साथ मिलकर सभी प्राणियों पर विजय प्राप्त कर ले, वो ब्रह्मनिष्ठ और कीर्ति की वृद्धि करने वाला पुरुष मेरा पति होना चाहिए। मार्कंडेय जी कहने लगे, युधिष्ठिर, उस कन्या की बात सुनकर इंद्र को बड़ा खेद हुआ और उन्होंने सोचा कि जैसा ये कहती है ऐसा तो कोई वर दिखाई नहीं देता। फिर वे उसको लेकर के ब्रह्मा जी के पास गए। इंद्र ने निवेदन किया, ब्रह्मा जी, इस कन्या के लिए कोई सद्गुणी और सूरवीर पति चाहिए। ब्रह्मा जी ने कहा कि इसके लिए जिस प्रकार तुमने विचार किया है यही बात मेरे मन में भी है। अग्नि के द्वारा एक महान पराक्रमी बालक होगा और वह इस कन्या का पति होगा और तुम्हारे सेना का अध्यक्ष भी होगा। ब्रह्मा जी की बात सुनकर इंद्र ने उन्हें प्रणाम किया और उस कन्या को साथ लेकर वहां वशिष्ठ आदि प्रधान प्रधान ब्रह्मर्षि और देवर्षि थे वहां गए। उन दिनों में महर्षिगण जो यज्ञ कर रहे थे उनमें देवता लोग आ करके अपना भाग ग्रहण करते थे। ऋषियों के बुलाने पर अग्निदेव भी वहां आए। मंत्रोच्चारण से उन्हें बुलाया गया और दी हुई बलियों को ग्रहण करके भिन्न भिन्न देवताओं को वो उनका हिस्सा देने लगे। उस समय ऋषि पत्नियों का रूप देखकर अग्निदेव की इंद्रियां चंचल हो गईं और वे बहुत विचार करने पर भी अपने को रोक नहीं सके, किंतु उस कामाग्नि को शांत करने का उन्हें कोई अवसर मिलना संभव नहीं था, क्योंकि सभी ऋषि पत्नियां बड़ी पतिव्रता और शुद्ध हृदय वाली थी। इसलिए अग्निदेव का हृदय बहुत संतप्त होने लगा और निराश होकर शरीर त्यागने के विचार से जंगल में चले गए। जब अग्नि की पत्नी स्वाहा को मालूम हुआ कि ऋषि पत्नियों पर मोहित होने के कारण अग्निदेव मेरे पति वन में चले गए हैं, तो उन्होंने विचार किया कि मैं ही ऋषि पत्नियों का रूप धारण करके इनके पास चली जाऊं, इससे इनको सब प्रकार से शांति मिलेगी। यह सोचकर स्वाहा ने पहले अंगिरा की पत्नी रूप गुणशीलवती शिवा का स्मरण किया, फिर अग्नि के पास जाकर कहने लगी, हे अग्निदेव, आप उस समय समुदाय में हमको देखकर छोड़कर आ गए थे, मैं आपके साथ आई हूं, मैं अंगिरा की भारिया शिवा हूं। तब जो है अग्निदेव ने उन्हें स्वीकार किया और उसके बाद उस देहांश को उन्होंने सप्तर्षियों में से किसी एक पत्नी का रूप धारण करके अग्नि के उसको स्वाहा ने अपने पास धारण कर लिया, किंतु अरुंधति के तप और पातिव्रत्य के प्रभाव से वह उसका रूप धारण नहीं कर सकी। इस प्रकार स्वाहा ने प्रतिपदा के दिन 6 बार अग्नि के उस अंश को उसी सुवर्ण के कुंड में डाल दिया और उससे एक ऋषि पूजित बालक उत्पन्न हुआ। उसका नाम स्कंद रखा। 6 सिर, 12 कान, 12 नेत्र, 12 भुजाएं, 1 ग्रीवा, 1 पेट, ऐसा वह द्वितीया को अभिव्यक्त हुआ। तृतीया को शिशु रहा। चतुर्थी को इसमें अंग संपन्न हो गया। फिर उदित होते हुए अग्नि के सूर्य के समान लाल लाल बादल के रूप में सुशोभित हुआ और फिर वह त्रिपुर विनाशक महादेव जी ने दैत्यों का संहार करने वाला जो रोमांचकारी धनुष रख छोड़ा था उसे स्कंद जी ने उठा लिया और भीषण नाद से तीनों लोकों के चराचर जीवों को संज्ञा शून्य कर दिया। तब उस महामेघ के समान गर्जना को सुनकर सारे प्राणी पृथ्वी पर गिर गए और जिन जिन प्राणियों ने उनकी शरण स्वीकार की उन्हें उनका पार्षद बना दिया और फिर उसका नाम स्वामी कार्तिकेय रखा। फिर उन्होंने श्वेत पर्वत के ऊपर खड़े होकर हिमालय के पुत्र कौंस पर्वत को बाणों से बीन दिया। उसी छिद्र में से होकर हंस और गिद्ध पक्षी आज भी मेरु पर्वत पर जाते हैं। कार्तिकेय जी के बाणों से विद्ध होने पर क्रौंच पर्वत नाद करने लगा, जिसके करने पर दूसरे पर्वत भी चीत्कार करने लगे। आर्त पर्वतों की ये चीत्कार सुनकर के कार्तिकेय जी विचलित नहीं हुए, बल्कि एक शक्ति हाथ में लेकर सिंहनाद करने लगे और उस शक्ति को छोड़ा और श्वेतगिरी के विशाल शिखर को फोड़ दिया। उनकी मार से विदीर्ण हुआ श्वेत पर्वत डरकर दूसरे पहाड़ों सहित पृथ्वी को छोड़कर आकाश में उड़ गया। ये पर्वत पहले उड़ा करते थे। तब पृथ्वी भी भयभीत होकर जहां से तहां फटने लगी और व्याकुल होकर कार्तिक जी के पास आई, और फिर कार्तिकेय जी कृपा से बलवती हो गई। पर्वतों ने भी उनके सामने सिर झुका दिया और फिर वे वापस पर्वत पर आ गए। तब शुक्ल पक्ष की पंचमी के दिन लोग उनकी पूजा करने लगे। इधर जब सप्तर्षियों को इस महान तेजस्वी पुत्र के उत्पन्न होने का समाचार मिला, तो उन्होंने अरुंधति के सिवाय और सब पत्नियों को त्याग दिया। किंतु स्वाहा ने सप्तर्षियों से बार बार कहा कि देखिए, ये सब मेरी माया थी, मैंने ही आपका रूप बनाया था। आप लोग अपने पत्नियों का त्याग मत करो। विश्वामित्र जी ने जब अग्निदेव को देखा था, तो वे सप्तर्षियों की इष्टि करके गुप्त रूप से उनके पीछे पीछे चले गए थे, इसलिए उन्हें सब बातों का ठीक ठीक पता था। उन्होंने सप्तर्षियों से कहा, इसमें आप लोगों की पत्नियों का तनिक भी अपराध नहीं है, किंतु उनमें सब बातें यथावत सुनकर भी उन्होंने अपने पत्नियों को त्याग ही दिया। जब देवताओं ने स्कंद के बल पराक्रम की बातें सुनी, तो आपस में मिलकर इंद्र से कहा, देवराज, स्कंद का बल असह्य है, आप उसे तुरंत मार डालिए। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो फिर आपको देवताओं का राज्य आपके पास नहीं रहेगा, यही बन जाएगा। इंद्र को यद्यपि अपने विजय में संदेह तो था, परंतु फिर भी ऐरावत पर चढ़कर सब देवताओं के साथ स्कंद पर धावा बोल दिया। भीषण युद्ध हुआ। कार्तिकेय जी ने बड़ी गर्जना की। देवताओं की सेना अचेत हो गई। खलबलाए हुए समुद्र के समान सनसनी फैल गई। देवताओं ने अपना ही वध करने के लिए अग्नि कुमार कार्तिकेय को कुपित देखकर अपने मुख से अग्नि की धधकती हुई ज्वालाएं छोड़ी। वे लपटे पृथ्वी पर भय से कांपती हुई चली। और इधर कार्तिकेय ने जब अपने मुख से अग्नि को जो है छोड़ना चालू किया, तो देवसेना समाप्त होने लगी, तितर बितर हो गए, तारागण के समान इधर उधर भाग गए और इंद्र को छोड़कर अग्निपुत्र स्कंद की शरण ले ली। तब उनको जाकर कुछ चैन मिला। इधर इंद्र ने स्कंद के ऊपर वज्र छोड़ा। वज्र ने उनके दाहिने अंग पर चोट की, इससे उनके अंग में से एक और पुरुष प्रकट हो गया। वह युवावस्था का था, सोने का कवच शक्ति दिव्य कुंडल धारण किए हुए था। अंगद के अंग में वज्र का प्रवेश होने के कारण से उसका नाम विशाख रखा गया। बड़ा भयंकर इंद्र को भय लगा कि अभी एक आफत तो मिटी नहीं, और इसके ऊपर प्रहार करने से नया ही एक पुरुष पैदा हो गया। तब इंद्र ने भी हाथ जोड़ लिए और स्कंद की शरण ली। तब स्कंद ने सबको आशीर्वाद दे दिया। देवताओं का और स्कंद का सब आपस में मेल हो गया। सब सप्तर्षियों ने कहा, देवश्रेष्ठ, तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारा मंगल हो। अभी तुम्हें उत्पन्न हुए 6 रात्रियां ही बीती हैं, फिर भी तुमने सारे लोगों को अपने वश में कर लिया, तुमने अभय बना दिया। इंद्र, अब तुम ही इंद्र बनकर तीनों लोगों को निर्भय करो। स्वामी कार्तिकेय ने पूछा, हे मुनियों, यह इंद्र त्रिलोकी का क्या काम करता है और किस प्रकार देवताओं की रक्षा करता है। ऋषियों ने कहा, इंद्र समस्त प्राणियों को बल, तेज, प्रजा, सुख प्रदान करता है, प्रसन्न होने पर सब प्रकार की इच्छाएं पूरी करता है, दुराचारियों का संहार करता है, सदाचारियों की रक्षा तथा प्राणियों के प्रत्येक कार्य में अनुशासन करता है। जब सूर्य नहीं रहता तो वही सूर्य हो जाता है, चंद्रमा के अभाव में वही चंद्रमा होकर चमकता है, वही भिन्न भिन्न कारणों से अग्नि, वायु, पृथ्वी और जल बन जाता है। यही सब काम इंद्र को करने पड़ते हैं, क्योंकि इंद्र में बड़ा बल होता है। तुम भी बड़े बलवान हो, इसलिए तुम ही हमारे इंद्र बन जाओ। तब इंद्र ने भी कहा, महाबाहु, तुम इंद्र बनकर हम सबको सुखी करो। वास्तव में तुम इस पद के योग्य हो। आओ, आज हम तुम्हारा अभिषेक कर देते हैं। स्कंद ने कहा, शक्र, आप निश्चिंत होकर त्रिलोकी का शासन करें, मैं आपका सेवक होकर रहूंगा, मुझे इंद्र पद की कोई इच्छा नहीं है। इंद्र बोले, वीर, तुम्हारा बल बड़ा अद्भुत है, तुम्हारे पराक्रम से चकित हुए प्राणी मुझे गिरी हुई दृष्टि से देखेंगे, यह नहीं वे हमारे बीच में भेद डालने का भी प्रयत्न करेंगे। इस प्रकार मतभेद हो जाने पर कहीं तुम्हारी और हमारी लड़ाई हो जाएगी, और जैसे मेरी धारणा है उसमें विजय तुम्हारी होगी, इसलिए बाबा तुम पहले ही इंद्र बन जाओ, ताकि आगे किसी प्रकार का लड़ाई झगड़े का काम ही न रहे। स्कंद ने कहा, इंद्र, ऐसी बात नहीं है। जो आदमी दूसरों के सिखाने में आ करके किसी के साथ बैर विरोध करता है वो महान मूर्ख होता है। मैं ऐसा नहीं हूं। मैंने आपको अपना राजा मान लिया, कोई संदेह नहीं है। आप हमारे स्वामी हैं। बोली, मैं आपकी क्या सेवा करूं, क्या कौन सी आज्ञा का पालन करूं। इंद्र बोले, अच्छा ठीक है, तुम हमारे कहने से यदि इंद्र बनना नहीं चाहते हो और हमारे कहने में रहना चाहते हो तो सुनो, हमारी देव सेना का एक सेनापति का पद खाली पड़ा है, हम तुमको देव सेना का सेनापति बनाते हैं। क्या ठीक है? दानुओं का विनाश करूंगा, देवताओं की उन्नति करूंगा, ब्राह्मणों के हित का काम करूंगा, और मैं सेनापति पद को स्वीकार करता हूं। उनके मस्तक के ऊपर सोने का छत्र लगाया। पार्वती जी सहित भगवान शंकर पधारे, उन्होंने विश्वकर्मा की बनाई हुई माला उनके गले में दे दी। अग्निदेव ने एक मुर्ग दे दिया, उसकी कालाग्नि के समान लाल रंग की ध्वजा सदा उनके रथ पर फहराया रहती थी। समस्त प्राणियों की चेष्टा, प्रभा, कांति, देवताओं की शक्ति सब उनको दे दी। कवच तो उनके शरीर में पहले से ही था, जब वह युद्ध करने के लिए जाते तो वो कवच अपने आप प्रकट हो जाता था, अन्यथा वो उनके अंदर छिपा रहता था। इसके पश्चात कार्तिकेय जी के आगे हजारों देव सेनाएं उपस्थित हो गईं। हे कार्तिकेय, आप हमारे सेनापति, हम आपको सेनापति के रूप में स्वीकार कर बड़ा गौरव का अनुभव करते हैं। फिर इंद्र की केशी के हाथ से छुड़ाई हुई देव सेना का स्मरण हो आया इंद्र को। वो सोचने, अरे मुझे उस देवसेना नाम की प्रजापति की कन्या ने कहा था, उसके लिए तो ये कार्तिकेय सबसे अच्छे वर है। आता है वे इंद्र देवसेना के पास जाकर उसका सब प्रकार से श्रृंगार आदि से सजावट कर इस स्कंद के पास ले आए और कहने लगे, हे देवश्रेष्ठ, ब्रह्मा जी ने आपके जन्म से पहले ही इसे आपकी पत्नी निश्चित कर दी है, आप इसे स्वीकार कीजिए। तब स्कंद ने विधि पूर्वक पाणी ग्रहण किया, बृहस्पति जी ने मंत्रोच्चारण करवाया और देवसेना कार्तिकेय जी की पटरानी हो गई। उसी को ही लोग प्राय षष्ठी, लक्ष्मी, आशा, सुखप्रदा, सिनी वाली, कुहू, सद्वृत्ति या अपराजिता भी बोला करते हैं। अनेक उसके नाम हैं। कार्तिकेय को श्री संपन्न और देवताओं का सेनापति हुआ देख ब्रह्मर्षियों की छह सप्तर्षियों की छह पत्नियां उनके पास आईं। धर्मयुक्ता व्रतशीला थी, फिर भी ऋषियों ने उनका त्याग किया था। उन्होंने देवसेना के स्वामी भगवान कार्तिकेय से कहा, बेटा हमारे देवतुल्य पतियों ने अकारण हमारा त्याग कर दिया, इसलिए हम पुण्य लोक से च्युत हो गई हैं। उन्हें किसी ने ये समझा दिया कि हमसे ही तुम्हारा जन्म हुआ है, अतः हमारी सच्ची बात सुनकर तुम हमारी रक्षा करो। तुम्हारी कृपा से हम अक्षय स्वर्ग की प्राप्ति कर सकती है, क्योंकि जिसका पति अपने पत्नी पर नाराज हो जाता है उसके क्रोध के कारण से पत्नी के उच्च लोक जल जाया करते हैं, इसलिए तुम हमारी सहायता करो। स्कंद ने कहा, निर्दोष देवियों, आप तो मेरी माताएं हैं और मैं आपका पुत्र हूं, इसके सिवा आपकी यदि कोई और इच्छा हो तो बताओ। स्वाहा ने भी कहा कि देखो तुम मेरे औरस पुत्र हो, मैं चाहती हूं कि तुम मेरा एक अत्यंत दुर्लभ प्रिय कार्य करो। क्या बात है, मैं दक्ष प्रजापति की लाडली कन्या हूं, बचपन से ही अग्निदेव पर मेरा अनुराग था, किंतु अग्नि को पूर्णतया मेरे प्रेम का पता नहीं था, मैं निरंतर उनके साथ रहना चाहती हूं। तब स्कंद ने कहा कि ब्राह्मणों के हव्य कव्य आदि जो भी पदार्थ मंत्रों से शुद्ध किए होंगे उनमें मैं स्वाहा ऐसा कहकर अग्नि में हवन करेंगे, उस हवनीय पदार्थ के साथ आप सदा ही अग्निदेव के साथ रहेंगे। तब से ब्राह्मण लोग आहुति देते समय स्वाहा का उच्चारण करते हैं और स्वाहा अग्नि के साथ रहती है। स्वाहा को बड़ी प्रसन्नता हुई। इधर ब्रह्मा जी ने स्कंद से कहा, तुमने अपने पिता त्रिपुर विनाशक महादेव जी के पास जाने की इच्छा प्रकट की तो चले जाओ, संपूर्ण लोगों के हित के लिए भगवान रुद्र ने अग्नि में और उमा ने स्वाहा में प्रवेश करके तुमको प्रसन्न किया है, उत्पन्न किया है। कार्तिकेय जी, करे मैं तो माता पार्वती का पुत्र हूं, मैं तो भगवान शंकर का पुत्र हूं, बड़ा आनंद का अनुभव हुआ। कार्तिकेय जी का अभिषेक किया गया, उस समय भगवान प्रसन्न होकर पार्वती के साथ एक बड़े सुंदर चमकीले रथ में बैठकर भद्रवट को चले, कुबेर जी के पुष्पक विमान में बैठकर उनके आगे आगे चल रहे थे, इंद्र ऐरावत पर चढ़कर देवताओं के सहित पीछे चल रहा था, दाहिनी ओर वसु और रुद्रों सहित अनेक अद्भुत देव सेनानी थे, यमराज भी मृत्यु सहित उनके साथ थे, यमराज जी के पीछे शंकर का अत्यंत दारुण त्रिशूल चलता था, उसके पीछे तरह तरह के जलचरों से घिरे हुए जलाधीश वरुण जी चल रहे थे। उस समय चंद्रमा ने महादेव जी के ऊपर श्वेत छत्र लगाया, वायु और अग्नि चमर करने लगे, बड़े बड़े राजर्षि देवराज इंद्र की स्तुति करते हुए चल रहे थे। तब महादेव जी ने बड़ी उदारता से कार्तिकेय से कहा, तुम सर्वदा सावधानी से इस देव व्यूह की रक्षा करते रहना। स्कंद ने कहा, भगवान जो आपकी आज्ञा है मैं वही करूंगा, इसके सिवा आप और भी कोई काम हो तो मुझे आज्ञा दीजिए। महादेव जी बोले, बेटा काम करने के समय भी तुम मुझसे मिलते रहना, मेरे दर्शन से और मेरे भक्ति से तुम्हारा कल्याण होगा। ऐसा कहकर कार्तिकेय को अपने हृदय से लगाया और उनको विदा किया। विदा करते ही बड़े उत्पात होने लगे, अंधकार छा गया, मेघों के समान अनेक प्रकार के आयुधों से सुसज्जित बड़ी भारी सेना खड़ी हो गई, बड़ी विकट सेना थी। महादेव शंकर पर, देवताओं पर वो सेना टूट पड़ी, बाण पर्वत शतग्नि प्रास तलवार सबका प्रयोग होने लगा, सेना इधर उधर भागने लगी। इंद्र ने ढाढ़स बंधाकर, वीरो भगो मत, शस्त्र संभालो, तुम्हारा ही मंगल होगा, जरा पराक्रम दिखाने का साहस करो, तुम्हारा सब दुख दूर हो जाएगा, मेरे साथ मिलकर दानवों को परास्त करो। देवताओं में उत्साह आ गया, फिर वहां खूब बड़ा भयंकर युद्ध होने लगा। देवताओं ने फिर दैत्यों के शरीर को नष्ट करना चालू किया। खूब वहां पर लाल लाल खून बहने लगा। देव सेना व्यथित हो गई। इतने में ही महिषासुर आया, एक बड़ा दारुण दैत्य, भारी पर्वत लेकर देवताओं की ओर दौड़ा। उसको देखकर देवता भागने लगे, किंतु उसने पीछा करके भागते हुए देवताओं पर वो पहाड़ पटक दिया। उससे 10,000 योद्धा धराशायी हो गए। फिर महिषासुर दूसरे दानों के सहित देवताओं पर टूटा। उसे अपनी ओर आते देख इंद्र सहित सभी देवतागण भागने लगे। तब महिषासुर रुद्र के रथ के पास पहुंचा और उसका धुर्रा पकड़ लिया। महादेव जी ने महिषासुर का संकल्प करने की प्रतिज्ञा की और उसी समय कार्तिकेय ऐसा स्मरण किया। बस उसी समय में कार्तिकेय वहां उपस्थित हो गया और क्रोध से भरे हुए वे सूर्य के समान तमतमा रहे थे। बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। कार्तिकेय जी ने महिषासुर का नाश करने के लिए एक शक्ति छोड़ी। बस शक्ति का छोड़ना हुआ और उसका मस्तक कटना हुआ, प्राणहीन होकर पृथ्वी पर गिर गया। इस प्रकार महिषासुर के नष्ट हो जाने के बाद सब दानव सेना इधर उधर भग गई। भगवान शंकर को प्रणाम किया, देवताओं का पूजन किया और इंद्र ने आलिंगन करके कहा, कार्तिकेय जी, महिषासुर ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किए हुए था, इसीलिए वो देवताओं को तिनके के समान समझता था। आपने इसका वध कर दिया, हम बड़े प्रसन्न हो गए। महादेव जी ने कहा, देखो तुम सब लोग कार्तिकेय को मेरे समान ही समझना, इसका कभी तिरस्कार मत करना। एक दिन में सारे दानवों का संहार कर दिया। इस प्रकार से कार्तिकेय की मैंने आपको कथा सुनाई है। एक दिन महात्मा पांडव लोग और ब्राह्मण लोग आश्रम में बैठे हुए थे। उसी समय प्रियवादिनी द्रौपदी और सत्यभामा में आपस में मिलकर कुछ चर्चा हुई। बड़े प्रेम से दोनों मिली। बहुत दिनों के बाद आज भेंट हुई थी। प्रेम पूर्वक आपस में हंसी करने लगी और कभी कभी कुरुकुल और यदुकुल से संबंध रखने वाली तरह तरह की बातें होने लगी। इसी समय श्री कृष्ण की प्रेयसी महारानी सत्यभामा ने द्रुपद नंदनी कृष्णा से कहा, बहन, तुम्हारे पति पांडव लोग लोकपालों के समान शूरवीर और सुदृढ़ शरीर वाले हैं, तुम उनके साथ किस प्रकार का बर्ताव करती हो जिससे कि वे तुम पर कभी नाराज नहीं होते और सर्वदा तुम्हारे अधीन रहते हैं। मैं देखती हूं कि पांडव लोग सर्वदा तुम्हारे वश में रहते हैं और तुम्हारा मुंह ताका करते रहते हैं, तुम्हारी एक एक बात को बड़ी गहराई से सुनते हैं और वैसा ही वे काम करते हैं। इसका रहस्य मुझे भी बता लाओ ना। पांचाली, तुम मुझे कोई ऐसा व्रत, ऐसा स्नान, ऐसी तपस्या, ऐसा मंत्र, औषधि, विद्या या कुछ और यौवन का प्रभाव तथा जप, होम या जड़ी बूटी बताओ जो यश और सौभाग्य की वृद्धि करने वाला हो और जिससे सर्वदा ही श्याम सुंदर कृष्ण मेरे अधीन बने रहे। ऐसा कहकर यशस्विनी सत्यभामा चुप हो गई। पूछा, क्यों द्रौपदी चुप क्यों हो गई? क्या मेरे प्रश्न से तुम नाराज हो गई? तब पतिपरायणा सौभाग्यवती द्रौपदी ने कहा, सत्ये, तुमने आज ये क्या प्रश्न कर डाला? इस प्रश्न से मुझे बहुत चोट लगी है। तुम तो मुझसे दुराचारिणी स्त्रियों के आचरणों की बात पूछ रही हो। भला उन दूषित आचरण वाली स्त्रियों के मार्ग की बातें मैं तुम्हें कैसे बताऊं? उनके विषय में तो तुम्हारा प्रश्न या शंका करना भी उचित नहीं है, क्योंकि तुम बुद्धिमती हो और श्री कृष्ण की पट्ट महिषी हो, तुम आठ पटरानियों में हो। जब पति को यह मालूम हो जाता है कि गृह देवी उसकी पत्नी उसे काबू में करने के लिए किसी मंत्र तंत्र का प्रयोग कर रही है, तो वह उससे उसी प्रकार दूर रहने लगता है जैसे घर में घुसे हुए सांप से सब दूर रहते हैं। इस प्रकार जब चित्त में उद्विग्न हो जाता है तब शांति कैसे रह सकती है, और जो शांत नहीं है उसे सुख कैसे मिलेगा। अतः मंत्र तंत्र से कभी भी पति अपनी पत्नी के वश में नहीं हो सकता, इसके विपरीत इससे अनेक प्रकार के अनर्थ होते हैं। धूर्त लोग जंतर मंत्र के बहाने ऐसी चीजें दे देते हैं जिनसे भयंकर रोग पैदा हो जाते हैं, तथा पतियों के शत्रु इसी मिस से विष तक दे डालते हैं। वे ऐसे चूर्ण होते हैं कि उन्हें यदि पति जिह्वा या त्वचा से स्पर्श कर ले उसी क्षण मर जाते हैं। ऐसी स्त्रियां अपने पति को तरह तरह के रोगों का शिकार बनाती हैं। वे उनकी कुमति से जलोदर, कोढ़, बुढ़ापा, नपुंसकता, जड़ता, बधिरता आदि के पंजों में पड़ चुके होते हैं। इस प्रकार पापियों की बातें मानने वाली वे पापिनी नारियां अपने पतियों को तंग कर डालती हैं, किंतु स्त्री को तो कभी भी किसी प्रकार अपने पति का अप्रिय कार्य नहीं करना चाहिए। हे यशस्विनी सत्यभामे, मेरी बात चाहे आपको कड़वी लगी हो लेकिन जो सत्य बात है वो मैंने आपसे कही है। लेकिन आपका हृदय ऐसा क्रूर नहीं है, इसलिए मैं आपको ये भी बताना चाहती हूं कि मैं पांडवों के प्रति किस प्रकार का आचरण करती हूं। मेरी सत्य सत्य बात को गहराई से सुनो। हे सत्यभामे, मैं अहंकार और काम क्रोध को छोड़कर बड़ी सावधानी से सब पांडवों की उनके अन्य अन्य स्त्रियों के सहित सेवा करती हूं। मेरे पतियों के सबके एक एक स्त्रियां और हैं, लेकिन मेरे मन में कभी भी इनसे ईर्ष्या नहीं होती है। मैं मन को काबू में रखकर केवल सेवा की इच्छा से पतियों का मन रखती हूं। ये सब करते हुए भी मैं अभिमान को अपने पास नहीं फटकने देती। मैं कभी भी अपने पतियों के सामने कटु भाषण नहीं करती, असभ्यता से खड़ी नहीं होती, खोटी बातों पर दृष्टि नहीं डालती, बुरी जगह पर नहीं बैठती, दूषित आचरण के पास नहीं फटकती, उनके अभिप्राय पूर्ण संकेत का अनुसरण करती हूं। देवता, मनुष्य, गंधर्व, युवा, सजधज वाला, धनी अथवा रूपवान कैसा भी पुरुष हो, मेरा मन पांडवों की सेवा और कहीं नहीं जाता। अपने पतियों के भोजन किए बिना मैं भोजन नहीं करती, स्नान किए बिना स्नान नहीं करती, बैठे बिना स्वयं नहीं बैठती। जब जब मेरे पति घर में आते हैं तभी मैं खड़ी होकर आसन और जल देकर उनका सत्कार करती हूं। मैं घर के बर्तनों को मांस धोकर साफ रखती हूं, मधुर रसोई तैयार करती हूं, समय पर भोजन कराती हूं, सदा सावधान रहती हूं, घर में गुप्त रूप से अनाज का संचय करती हूं, घर को स्वयं अपने हाथ से झाड़ बुहार कर साफ रखती हूं। मैं बातचीत में किसी का तिरस्कार नहीं करती, कभी उल्टा स्त्रियों के पास नहीं पटकती, सदा पतियों के अनुकूल रहकर आलस्य से दूर रहती हूं। मैं दरवाजे पर बार बार जाकर खड़ी नहीं होती हूं, तथा खुली या कूड़ा करकट डालने की जगह भी अधिक देर नहीं ठहरती, किंतु सदा ही सत्य भाषण और पति सेवा में तत्पर रहती हूं। पतिदेव के बिना अकेला रहना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। जब किसी कौटुंबिक कार्य से पतिदेव बाहर जाते हैं तो मैं पुष्प और चंदन आदि को छोड़कर नियम और व्रत का पालन करती रहती हूं। मेरे पति जिस चीज को नहीं खाते, नहीं पीते, नहीं सेवन करते, उससे मैं कोसों दूर रहती हूं। स्त्रियों के लिए शास्त्र ने जो जो बातें बताई हैं, उन सब का मैं पालन करती हूं। शरीर को यथा प्राप्त वस्त्रालंकारों से सुसज्जित रखती हूँ तथा सर्वदा सावधान रहकर पतिदेव का प्रिय करने में तत्पर रहती हूँ। सासू जी ने मुझे कुटुंब संबंधी बहुत से धर्म बताए हैं, उनका मैं पालन करती हूँ। भिक्षा देना, पूजन करना, श्राद्ध करना, त्योहारों पर पकवान बनाना, माननीय पुरुषों का सत्कार करना, जो जो धर्म मेरे लिए विहित है बड़ी सावधानी से रात दिन आचरण करती हूँ। मैं विनय और नियमों का सर्वदा सब प्रकार अपनाए रहती हूँ। मेरे पति मृदुल चित्त, सरल स्वभाव, सत्यनिष्ठ, सत्य धर्म का पालन करने वाले हैं। मैं सर्वदा सावधान होकर उनकी सेवा में रहती हूँ। मेरे विचार से तो स्त्रियों का सनातन धर्म पति के अधीन रहना ही है, क्योंकि स्त्री के लिए पति इष्ट देव है, वही आश्रय है, भला उसका अप्रिय कौन कामिनी करेगी। मैं अपने पतियों से बढ़कर कभी नहीं किसी को देखती, उनसे अच्छा भोजन नहीं करती, उनकी अपेक्षा बढ़िया आभूषण नहीं पहनती, न कभी सासू जी से वाद विवाद करती हूँ तथा सदा ही संयम का पालन करती हूँ। मैं सावधानी से सर्वदा अपने पतियों से पहले उठती हूँ तथा बड़े बूढ़ों की सेवा में लगी रहती हूँ, इससे पति मेरे वश में रहते हैं। वीर माता, सत्यवादिनी आर्या कुंती की मैं भोजन, वस्त्र, जल आदि से सदा ही सेवा करती रहती हूँ। वस्त्र, आभूषण और भोजन आदि में मैं कभी भी उनकी अपेक्षा अपने लिए कोई विशेषता नहीं रखती। पहले धर्मराज युधिष्ठिर के महल में नित्य प्रति 8,000 ब्राह्मण सुवर्ण के पात्र में भोजन किया करते थे। महाराज युधिष्ठिर 88,000 गृहस्थ स्नातकों का भरण पोषण करते थे और उनके 10,000 दासियां थी। वे मणि जटित सुवर्ण के आभूषणों से सुसज्जित रहती थी। मुझे उनके नाम, रूप व भोजन, वस्त्र सभी बातों का पता रहता था। इस बात की भी निगाह रखती थी कि किसने कौन सा काम किया है और कौन सी ऐसी दासी जिसने कौन से काम में प्रमाद किया है। मतिमान कुंती नंदन की 10,000 दासियां हाथों में थाल लिए रात दिन अतिथियों को भोजन कराती रहती थी। मैं सब पर बराबर दृष्टि रखती थी। भोजनालय में जाकर कहां भोजन किसके लिए कितना उचित होता है बराबर ध्यान रखती थी। जितने दास दासियां थे उनके परिवार में किस समय कौन सी आफत आई है, किस समय इनको कैसा द्रव्य की आवश्यकता है, इसका भी मैं पूरी बात का ध्यान में रखती थी। जिस समय इंद्रप्रस्थ में रहकर महाराज युधिष्ठिर पृथ्वी का पालन करते थे, उस समय उनके साथ 1,00,000 घोड़े, 1,00,000 हाथी चलते थे। उनकी गणना और प्रबंध मैं ही करती थी और मैं ही उनकी आवश्यकताएं सुनती थी। अंतःपुर के ग्वालों और गडरियों से लेकर सभी सेवकों के कामकाज की देखरेख भी मैं किया करती थी। मुझे शर्म नहीं आती थी कि मैं घुड़साल में कैसे जा रही हूँ। मुझे लाज नहीं आती थी कि मैं जहाँ हाथी पाले जा रहे हैं उनके वहां जाकर मैं क्या व्यवस्था देख रही हूँ पटरानी होकर। ऐसा मुझे कभी अभिमान नहीं हुआ। यशस्विनी सत्यभा में महाराज की जो कुछ आमदनी और व्यय और बचत, उसका पूर्ण विवरण मैं अकेले रखती थी। पांडव लोग कुटुंब का सारा भार मेरे विश्वास पर छोड़कर पूजा पाठ में लगे रहते, प्रजा के पालन में रहते थे और आए गयों का स्वागत सत्कार करते थे और मैं सब प्रकार के सुख को छोड़कर उसकी साल संभाल करती थी। मेरी धर्मात्मा पतियों का जो वरुण के भंडार के समान अटूट खजाना था, उसका पता भी एक मुझे ही था, किसी को नहीं था। मैं भूख प्यास को सहकर रात दिन पांडवों की सेवा में लगी रहती। उस समय रात और दिन मेरे लिए समान हो गए। मेरी यह बात सुन सच मानो, मैं सदा सबसे पहले उठती थी और सबके सो जाने के बाद सबसे पीछे सोती थी। पतियों को वश में करने का मुझे यही उपाय मालूम देता है। दुष्टा स्त्रियों के से आसन न तो मैं करती हूँ और न मुझे अच्छा लगता है।
द्रौपदी की बातें सुनकर सत्यभामा का हृदय बदल गया। उनकी आंखों से टपटप आंसू गिरने लगे। द्रौपदी का बड़ा आदर करते हुए कहा, पांचाली मेरी एक प्रार्थना है, तुम मेरे कहे सुने को क्षमा करना। सखियों में तो जानबूझकर भी ऐसी बातें कह ही दी जाती हैं, मेरा हृदय ऐसा नहीं है। हे द्रौपदी, मुझे और भी कुछ बात बताओ। अब द्रौपदी सत्यभामा को और भी कुछ बात कल बताएंगे।
श्रीमन्नारायण नारायण नारायण।